ज्ञान कौन
जी इसमें ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा ज्ञान धारण किया होगा,
ज्ञान होगा,
ज्ञान ज्यादा हो और धारणा कम हो तो सुख भोगेगा नहीं भोगेगा। अच्छा प्रजापिता वाली आत्मा है और पार्वती वाली आत्मा है, दोनों में ज्यादा सुख कौन भोगेगा? क्यों? ज्ञान ज्यादा किस में है? है? प्रजापिता में ज्ञान ज्यादा है, है? अभी तक भी पार्वती वाली आत्मा ने एडवांस ज्ञान लिया ही नहीं है, प्योरिटी के आधार पर धारणा भी जास्ती होती है और जिसमें जास्ती धारणा होगी वो जास्ती सुखी रहेगा। ज्ञान ज्यादा हो और धारणा न हो तो उसे किसका ज्ञान कहा जाता है? रावण का ज्ञान, इसलिए राम ही रावण बनता है।
दृष्टि देते हैं ना, जो दृष्टि
है
हाथ का दृष्टि,
हाँ
बेहद का दृष्टि अभी आप देते हैं ना, एक बाबा दृष्टि देते हैं, इसका अंतर क्या है?
बाबा जो दृष्टि देते हैं
और बेहद का भी दृष्टि बोलते हैं ना,
बेहद की दृष्टि माना जो आत्मा सेवा में लगी रहती है, सर्विस फील्ड में रहती है, तो उन सर्विसेबल बच्चों को बाप के तीसरे नेत्र की दृष्टि मिलती है। बाप उन्हें उन बच्चों को बार बार याद करते हैं, जब तो कोई को याद किया जाता है तो उसका रूप सामने आता है कि नहीं, तो कौन सी दृष्टि से देखा जाता है? तीसरे नेत्र से वो रूप देखा जाता है ना, तो दृष्टि मिली ना, तीसरे नेत्र की दृष्टि मिली। इन आंखों से जो दृष्टि लेन देन हो रहा है महत्व तो उसका भी है, क्योंकि संग का रंग कर्मेंद्रियों के द्वारा ही लगता है, मन और बुद्धि के द्वारा ही संग का रंग लगता है, वाइब्रेशन के द्वारा ही संग का रंग लगता है, लेकिन वाइब्रेशन को कैच करने वाली आत्माएं भी पावरफुल होनी चाहिए। तो जब तक इतनी पावर नहीं आई है तब तक इस दृष्टि से भी, जो स्थूल दृष्टि है, इस दृष्टि से भी संग का रंग लिया जा सकता है, क्योंकि आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद आती है, और जितना लगाव पूर्वक देखी जाती है उतना जास्ती याद आती है। बेलगाव से देखेंगे, देखते तो है, लेकिन बेलगाव से देखेंगे तो याद नहीं आवेगी, और दिल लगा के देखेंगे तो याद जरूर आवेगी। और
किस जगह पे बनेगी?
उसी जगह पे बनेगी जहाँ कर्मातीत स्टेज पे आत्माएं रहती हैं।
ना वो माउंट आबू होगा।
आत्माएं कहाँ रहती हैं जब कर्मातीत स्टेज हो जाती है? आत्माएं जब कर्मातीत स्टेज हो जाती है तो धरणी में रहती हैं या शांतिधाम में रहती है? शांतिधाम में रहती है। तो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो कहाँ उतारेंगे? अकेले उतार लेंगे या संगठित शक्ति से उतारेंगे? संगठित शक्ति वो कलयुग में जास्ती काम करती है।
उसी समय 84 जन्मों का चक्र भी पता चलेगा।
जितनी आत्मिक स्टेज बनेगी उतनी आत्मा अपने स्वरूप को जानेगी। आत्मिक स्टेज नहीं बनेगी, देवान की स्टेज होगी तो आत्मा इसी एक जन्म में ही गोते खाती रहेगी। हम देवान में रहेंगे तो इसे एक जन्म से ही बुद्धि कनेक्टेड रहेगी, इस एक जन्म में ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और आत्मिक स्थिति में पक्के हो जाएंगे तो आत्मा अनेक जन्मों के स्वरूप को जानने में सक्षम हो जाएगी। तो हम आत्मा बने या अभी देह अभिमानी बने हैं, आत्मा बने, आत्मा बने हैं तो फिर अनेक जन्मों की बात हमारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बनना है माने अभी भी देवान आकर्षित करता है, जब तक देवान आकर्षित करता है तब तक इस जन्म की बातों की यादगार जास्ती रहती है और देवान से आत्मा परे हो जाती है तो फिर अनेक जन्मों की स्मृति आना शुरू हो जाए। हाँ जी,
और एक ही के आदि में जब पीयू की वाणी चली ना तो गीता माता और प्रजापिता दोनों के ही द्वारा चलाई गई, तो गीता माता के द्वारा जब चलाई गई तो भी पीयू की वाणी माना पिता की वाणी कही जाएगी, पीयू माना पिता कहा जाता है,
पीयू माना पिता और पिता माना शिव बाप, वाणी कौन चलाता है, शिव बाप चलाता है। अब वो चाहे माता के द्वारा चलाई हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी रहा हो, चाहे जापानी इंस्ट्रूमेंट हो और चाहे हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन चलाने वाला कौन है, शिव बाप। वाणी किसकी है, बाप की वाणी है, पीयू की वाणी है।
तो वो कौन सी भाषा में चली होगी,
हिंदी में ही चली होगी, दूसरी भाषा में क्यों चली, बाप आकर के हिंदी में ही बोलते हैं दूसरी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, सिंधी में तो बोलते नहीं।
तो फिर उस समय प्रजापिता को अच्छी तरह आता होगा,
वो हिंदुस्तान में रहता था या पाकिस्तान में रहता था,
लेकिन बंगाला था ना,
है
बंगाला था ना,
बंगाला बंगाली, अब बंगाली था तो क्या बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते क्या, अब बंगाली था भी कि नहीं था ये भी तो पक्का नहीं है, बंगाल में धंधा करते थे, कोई ये जरूरी थोड़े ही कि जो बंगाल में धंधा करता हो वो बंगाली ही हो, ब्रह्मा बाबा बंगाली थे क्या, वो तो सिंधी थे फिर भी बंगाल में धंधा करते थे। हाँ जी,
जैसे तुमने बोला ना कि जो सागर में मछलियाँ होती हैं उनमें तो कोई मछलियाँ एक दूसरे को खाते हैं और एक कोई कोई तो घास फूस खाके जीते हैं, तो ये बेहद
मछलियाँ तो एक दूसरे को खाती है, मत्स्य न्याय कहा जाता है, मत्स्य माना मछली का न्याय, जो बड़ा मछला है वो छोटी मछली को खा जाता है, मोस्टली सागर में तो मछलियाँ ही होती है, सागर में मछलियाँ ही होती हैं, अगर जो सिवार घास वगैरह जो कुछ होती है वो तल्ले में होती है तो छोटी छोटी मछलियां तो तल्ले में पहुंच ही नहीं पाती, तो मोस्टली उनका आहार क्या होता है मछलियों का, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, वही उनका भोजन होता है मोस्टली।
और सेक्टर को मृगशालाधारी दिखाते हैं ना,
हाँ
मतलब
है
मृगशालाधारी दिखाते हैं ना,
हाँ
उसका मतलब
बोला वाला नहीं है, है भोला नहीं है क्या, मृग कैसे स्वभाव का होता है, मृग का स्वभाव कैसा होता है, है हिंसक होता है क्या, नहीं भोला वाला स्वभाव होता है, तो उसकी यादगार कैसे दिखे,
शेर की खाल पर बैठा हुआ दिखाते हैं उसको,
है शेर नहीं बाघ, देवियां भी दो प्रकार की होती है, बागंबरी देवी और शेर के ऊपर सवारी करने वाली सिंहवाहिनी, तो बाघ के ऊपर सवारी और शेर के ऊपर सवारी त्रिमूर्ति में दोनों ही दिखाए गए, जो बबर शेर होता है ना सिंह जैसे कहते हैं वो तिकड़मी स्वभाव का नहीं होता है, सीधा हमला करता है। और बाघ टाइगर बहुत चुस्त चालाक होता है, और जब देखेगा कि मौका नहीं है तो हमला बिल्कुल नहीं करेगा, छुप जाएगा। और जहां देखेगा आप ठीक है, हाँ धर पकड़ेगा। तो अपने भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, है? शेर या टाइगर? क्यों? भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाला जानवर शेर क्यों नहीं बनाया, टाइगर क्यों बनाया गया? है? है?
वो चालाक
है। जो टाइगर है वो शंकर जी को उसके ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है, क्या बताने के लिए कि वो ऐसा आसनधारी है। जो राम वाली आत्मा है वो बाघ के स्वभाव की है। ये दो पक्षियों में मोर और जानवरों में टाइगर राष्ट्रीय माने जाते हैं। और
जब विनाश होगा तो कौन सी जगह बचेगी भारत में, यूपी के अलावा?
उत्तर भारत सारा ही बचेगा।
तो माउंट आबू भी तो
माउंट आबू तो अंत तक भी बचेगा। माउंट आबू तो ऐसी जगह है जहां से बैठ करके ब्राह्मण बच्चे सारी दुनिया में विनाश की लपटों को देख सकेंगे टीवी में।
विनाश के बावजूद जो बचेगा वो जगह का नाम
माउंट आबू, आबू अब्बा का घर है। दुनिया में सबसे ज्यादा योग के वाइब्रेशन कहां है, है? माउंट आबू। अरे एडवांस एनालिसिस तो सन 76 से शुरू हुई, सन 76 से शुरू होने के बावजूद भी जो मिनी मधुबन की स्थापना है वो तो सन 83 में हुई, तो तब तक तो माउंट आबू ही तपस्या भूमि रही ना। बुद्धि का, ब्राह्मणों की बुद्धि का केंद्रीकरण कहां रहा, माउंट आबू में। और जो एडवांस पार्टी का केंद्रीय स्थल मिनी मधुबन बना भी तो वो थोड़े लोगों के लिए हुआ या हुजूम के लिए हुआ, है? थोड़े लोगों के लिए हुआ। जास्ती से जास्ती लोगों की बुद्धि का केंद्रीकरण तो अभी भी माउंट आबू में, और लास्ट में वो माउंट आबू ही महामधुबन बनेगा।
जब बनेगी तो बाहर दुनिया ये देखेगी,
कंचन काया जिनकी बनेगी उन कंचन काया वालों का संगठन अलग होगा या मिक्स होगा दुनिया के साथ? अगर दुनिया के साथ मिक्स होगा तो वाइब्रेशन फिर खराब होते रहेंगे, इसलिए नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। माना कनेक्शन नहीं होगा, पता पड़ेगा। साधन इतने बढ़ते जा रहे हैं संसार में, पता सब कुछ पड़ेगा, लेकिन ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पार्ट को कैसे करना
है,
पार्ट को कैसे पहचान?
आत्मिक स्थिति काउंट करो कि 24 घंटे में कितनी स्टार आत्मा को देखने के अभ्यासी बने हैं और कितना देह याद आती है अपनी या दूसरों की।
पार्ट है,
पार्ट आत्मा का है या देहधारी का है? चौरासी जन्मों का पार्ट तो आत्मा का है ना। तो पहले अपने को ये काउंट करना पड़ेगा कि 24 घंटे में हमारी जो अंदरूनी दृष्टि है वो स्टार आत्मा के ऊपर कितनी रहती है, चाहे अपनी स्टार आत्मा याद आए चाहे दूसरों की स्टार आत्मा याद आए, वो कितनी देर कितना परसेंटेज में रहती है। अब मनन चिंतन तो करते हैं, लेकिन मनन चिंतन करने के बावजूद भी मनन चिंतन उतना ही श्रेष्ठ होगा जितना आत्म की स्थिति पक्की होगी। देवान है तो मनन चिंतन भी मिक्स हो जाएगा,
बाप
स्वार्थ के आधार पर मनन चिंतन होगा।
बाप की याद में और बाप की याद में और आत्म की स्थिति में रहना है।
आत्म की स्थिति में रहेंगे तो बाप की याद सहज हो जाएगी।
स्टार को देखना, स्टार को देखना, स्टार को देखना, स्टार को देखना,
स्टार को देखना, स्टार को देखना, स्टार को ये आसमान में स्टार देखते हैं, आपने देख लिया ये स्टार है, फिर उसको याद नहीं कर सकते, करेंगे ना? तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। जो चीज इन आंखों से देखी जाती है तो याद आती है ना, वो तो स्थूल चीज देखी, लेकिन हम उस स्थूल चीज को हम याद करते करते सूक्ष्म भी तो बना सकते हैं। पहले ही कोई चाहे कि हम शुरुआत में ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा को देखने के अभ्यासी बन जाए तो नहीं बन पाएगा। अगर सितारा याद नहीं आता तो बड़े रूप लिंग रूप को ही याद करो, कुछ तो फायदा होगा। वो याद करते करते फिर सूक्ष्म रूप की भी याद आने लगेगी।
सबसे अच्छा पोशाक नारायण को याद करना
है। नारायण में शरीर भी है, नारायण में आत्मा भी है।
बाबा सबको कहा निराकार को याद करेंगे तो निराकार बिंदु को याद करेंगे तो पाप कर्म बस नहीं होता, ऐसा बोला
है क्या?
निराकार बिंदु को याद करेंगे तो पाप कर्म बस नहीं होता, ऐसा बोला।
पाप कर्म तो भस्म होते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के पाप कर्म भस्म नहीं होते, या उन्होंने पाप कर्म किया ही नहीं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो द्वापर और कलयुग में आते हैं वो बिंदु को याद करते हैं या साकार में निराकार को याद करते हैं? करते हैं ना, तो उनके पाप कर्म भस्म नहीं होते।
सभी जना
जो बात पूछी है उसका जवाब दो, उनके पाप कर्म भस्म होते हैं ना? पाप कर्म तो भस्म होते हैं, लेकिन वो ऐसी स्टेज में नहीं पहुंच सकते जो देवता बन सके। देवता बनने के लिए साकार में निराकार को याद करना पड़ेगा, प्रवृत्ति को याद करना पड़ेगा। प्रवृत्ति के स्वरूप को याद करेंगे तो हम प्रवृत्ति वाले देवता बन जाएंगे। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। तो देवता बनने के लिए जरूरी है कि हम ऊंचे ऊंचे साकार स्वरूप को पहचाने और उसमें निराकार ज्योति बिंदु को याद करें।
लेकिन राम बाबू सिर्फ निराकार तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदु याद आएगी?
तेरी बुद्धि में तो बाबा कहने से, बाबा कहने से बिंदु ही याद आएगी।
तो सिर्फ एक राम बाबू को है ना?
क्या
तो ऐसा पॉइंट बोल दिया बाबा?
कैसा पॉइंट?
तेरी बुद्धि में बोले तो एक ही सिर्फ राम को कहा जाता है ना, सभी ब्राह्मण दुनिया बोले तो शिव बाबा का याद करते हैं, साकार को निराकार। लेकिन राम बाबा को सिर्फ निराकार बिंदु को याद करते हैं ना?
क्या ये तुम्हें कैसे मालूम निराकार बिंदु को याद करता है? निराकारी बिंदु को याद करता है यान माने राम वाली आत्मा को पता ही नहीं है कि वो साकार स्वरूप कौन है जिसमें निराकार प्रवेश करता है? उसको नहीं मालूम होगा तभी तो नहीं याद करेगा साकार में निराकार को। अगर मालूम होगा तो याद करेगा या नहीं करेगा? तो फिर प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? और अपने शरीर में याद करना सहज होता है कठिन होता है? अपने अंदर याद करना तो और सहज, कोई दूसरे के तन में याद करना, उसमें थोड़ा अंतर पड़ सकता है, स्वभाव संस्कार टकरा सकते हैं। हाँ जी
बाबा, मुनि में यह भी बात है कि शरीर बिना आत्मा को याद नहीं किया।
हाँ जी, शरीर बिना
आत्मा को याद नहीं किया।
ज्योतिबिंदु शिव को जब साका एडवांस नॉलेज नहीं थी तो कैसे याद करते थे? नहीं याद किया जा सकता तो याद कैसे करते थे? आत्मा की कट बेसिकली कैसे उतरी अगर नहीं याद करते तो? बेसिक नॉलेज में हमें ज्ञान दिया गया आत्मा ज्योति बिंदु और परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। तो जब हमने जान लिया कि वो ज्योति बिंदु है तो ज्योति बिंदु के रूप में याद किया ना बेसिक नॉलेज में।
चरित्र के आधार से
है,
चरित्र के आधार से याद किया, सिर्फ बिंदु का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। जब चरित्र
बिंदु का अर्थ कुछ नहीं निकलता है, मेरी आत्मा का नाम ही शिव है, उसका रूप बिंदु है।
चरित्र
चरित्र जब साकार में प्रवेश करता है तो चरित्र होते हैं,
तभी याद श्रेष्ठ बनता है ना।
श्रेष्ठ की बात अलग है, ये नहीं श्रेष्ठ निष्कर्ष की बात नहीं। हमारा प्रश्न ये था कि बिंदु की याद नहीं की जा सकती, तो ऐसी बात नहीं है, बिंदु को याद किया जा सकता है और करते भी है। जो 10 करोड़ देव आत्माओं की सोल है, देव आत्माएं हैं, उनके अलावा जो भी आत्मा है ऊपर से नीचे उतरती है वो सब किसको याद करती है? है बिंदु को याद करती है, उनमें देव आत्माएं भी है।
अब अभी मुरली ने बोला विष्णु का नाभि से ब्रह्मा निकला।
हाँ जी,
लेकिन टेक्निकल आदि में विष्णु न्यूट्रल पाते है ना,
है
न्यूट्रल पाते है ना, राधा बच्ची वैष्णवी न्यूट्रल पाते है ना।
हाँ,
उसका नाभि से ब्रह्मा कैसा रहा?
उसकी नाभि से क्यों? विष्णु माना कपिल युगल,
गीता माता प्रजापति का बात है।
हाँ जी,
लेकिन वास्तव में वैष्णव विष्णु है ना।
हाँ जी, तो गीता माता का तो नाम तुमने गुजर दिया, अपने कहाँ का गीता माता तुमने बोला ना, हमने तो नहीं कहा। यज्ञ के आदि में कोई युगल था जिनके संस्कार आपस में मिले हुए थे, जैसे ब्रह्मा सरस्वती वो देखने में आए कि मम्मा कभी भी बाबा की बात को काटती नहीं थी, टालती नहीं थी, जैसे बाबा चलाना चाहते थे वैसे ही चलती थी। मम्मा भी संतुष्ट है और बाबा भी मम्मा से संतुष्ट, तो प्रवृत्ति मार्ग का यही सैंपल था या उससे भी कोई ऊंचा और सैंपल रहा होगा? अरे यज्ञ में पहला सैंपल ब्रह्मा सरस्वती ही प्रवृत्ति मार्ग का सैंपल हुआ या कोई दूसरा भी सैंपल था? जरूर रहा होगा, नहीं रहा होगा तो अंत में जाके जन्म कैसे देगा? आज में रहा होगा तो अंत में जन्म भी देगा, रचयिता भी बनेगा। रचना में ज्यादा पावर होती है या रचयिता में ज्यादा पावर होती है? रचयिता में ज्यादा पावर होती है। तो प्रवृत्ति मार्ग की जो पावर है वो ब्रह्मा सरस्वती में ज्यादा या उनको भी जन्म देने वाले जो निमित्त बनते हैं उनमें ज्यादा, जो निमित्त बनते हैं उनमें ज्यादा होती है। हाँ जी,
ब्राह्मण देवता और
क्षत्रिय। हाँ जी, हाँ जी, ब्राह्मण धर्म की तो स्थापना हुई ब्रह्मा द्वारा, तो सब कोई कहेंगे कि यहाँ नंबर वन ब्राह्मण तैयार हुए। अब जब परीक्षा हो जाएगी, फाइनल परीक्षा होगी, तो कोई पास होंगे और कोई फेल होंगे, फाइनल फेल हो जाएंगे। जो पास हो जाएंगे वो सूर्यवंशी और जो फेल हो जाएंगे वो क्षत्रिय बन जाएंगे। तो तीनों धर्म की स्थापना होगी बाप द्वारा। और
चला गई ना।
हाँ जी,
तो सिर्फ
उसे
पढ़ के सुनाया
गया
या
क्लैरिफिकेशन भी दिया
जाता
था?
तो हमें पढ़ते थे।
हाँ,
तो पढ़ने वाली सोल उस समय कौन सी थी?
है वाला
ब्रह्मा तो ब्रह्मा तो सभी ब्रह्मा है, ब्रह्मा कौन सा नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, है? अरे ब्रह्मा जो चार पांच नाम है ब्रह्मा के, उन ब्रह्मा में एक है प्रजापिता ब्रह्मा और बाकी सब है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा तो सभी है।
जानकी दादी के बारे में कभी कुछ बोले नहीं,
क्यों नहीं बोले,
तो कौन सी धर्म की
है? अरे वो प्रैक्टिकल जीवन में अभी कहाँ कंट्रोल कर रही है, निमित्त कहाँ है, तो लंदन में निमित्त है, तो लंदन में जिन आत्माओं के संग और रंग में आ रही है, जिनका उनके ऊपर असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जानकी दादी का कुछ आत्माओं के ऊपर असर पड़ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उनकी प्रजा नहीं तैयार हो रही, कहाँ प्रजा ज्यादा तैयार हो रही है, भारत में या विदेश में, तो कौन हुई, क्रिश्चियंस में दिखावा बहुत होता है, इतना दिखावा होता है कि वो प्रभावित कर लेते हैं कि हम बड़े सभ्य हैं, लेकिन अंदर से असभ्यता का पारावार भरा हुआ रहता है। सारे ब्राह्मण परिवार में अभी सबसे ज्यादा धारणा वाली माता कौन मानी जाती है, कौन सी दादी है जो सबसे ज्यादा धारणावान मानी जाती है, जानकी दादी है, उनकी असलियत तब पता चलती है जब एडवांस ज्ञान लेने वाला कोई स्टूडेंट लंदन से निकलता है पहला और उनके सामने पहुंचता है, तो न कोई बात करे न चीज, गेट आउट, ये धारणा है आत्मा आत्मा बाई बाई की, बहुत बढ़िया धारणा।
और जो छाया चित्र बने थे ना एक पहले तो किसने बनाया, तो बनवाए
बाबा साक्षात्कार कराते जाते थे और बनाने वाले उनको डायरेक्शन देते थे चित्रकार को, कि ऐसा ऐसा उनको साक्षात्कार हुआ, चित्रकार उसको वैसा वैसा बनाता जाता था, फिर ब्रह्मा बाबा उसको करेक्ट करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बार बार ध्यान में जाती थी संदेशियां और तीनों चित्र तैयार कराती थी चित्रकार से।
जैसे लास्ट चित्र जो सीढ़ी है, तो
सीढ़ी का चित्र साक्षात्कार से तैयार नहीं हुआ,
नहीं वो तो बुद्धियों की आदत है,
हाँ जी,
लेकिन वो रमेश बच्चन ने बनवाया ऐसे बोलते,
हाँ जी हाँ जी,
तो वैसे ही जो बाकी चार चित्र है वो किसने बनाया,
वो बुद्धियोग से बनाया गया, बुद्धियोग भारतीयों का ज्यादा तीखा होता है या विदेशियों का ज्यादा तीखा होता है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधारभूत आत्मा है विदेशियों की, उसके द्वारा वो सीढ़ी का चित्र बनाया गया, और बाकी जो तीन चित्र है वो साक्षात्कार के आधार से बनाए गए, चित्रकार ने, चित्रकार बनाता जाता था, दीदी दादियां जो है साक्षात्कार में जाती थी और जो साक्षात्कार में देखती थी वो उसको बताती थी, बार बार साक्षात्कार में जाना, बार बार उस चित्रकार को बताना कि ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, और जब चित्र बन के तैयार होता है तो बाबा उसको वेरीफाई करते,
सीढ़ी के चित्र में तिरासी सीढ़ियां ही सिर्फ दिखा है और एक सीढ़ी नहीं दिखा
है,
बसंत सदन के रूप में है वही 84 जन्म का सीढ़ी है,
क्या
सीढ़ी के जो चित्र है ना उसमें सिर्फ गिनती किया जाए तो 83 ही सिर्फ सीढ़ियां
है, 83 सीढ़ियां,
हाँ जी,
अरे वो वापर कलयुग की बात छोड़ दो,
है पूरे मिलाकर 83 ही सीढ़ियां हैं,
और संगम युग कहाँ चला जाएगा,
वो सीढ़ी के रूप में तो नहीं दिखाया ना, गोला दिखा दी,
गोला दिखा दिया,
ये पुरुषोत्तम संगम युग का चिन्ह दिखा दिया ना, सीढ़ी के रूप में तो नहीं दिखा,
अरे इसमें तो चढ़ती कला है उतरती कला कहाँ है,
है
इस इसमें तो चरती कला वाला युग वो जन्म घुसा हुआ है।
हाँ ऊपर उठा के बना दिया था बाबा।
हाँ
वो कहने के एक सीढ़ी कम दिख रही है।
एक सीढ़ी
कम दिख रही है, कम गिने जाना बोलते हैं बहनों।
हाँ
लेकिन दोनों को तो ऊपर बता दिया ना, 16 सीढ़ी से ऊपर बता दिया।
हाँ तो संगम युग एक्स्ट्रा जन्म है, वो सबसे ऊपर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो 84वां भी है और पहला भी है। कौन सा चिन्ह, चिन्ह कौन सा है?
ये क्वेश्चन तो संगम युग को चार कुमारियों को दिखा दिया ना।
हाँ हाँ
तो उस रूप में दिखाया, लेकिन स्टेप्स के रूप में नहीं दिखाया।
हाँ तो वो स्वर्णिम संगम युग की कुमारियां नहीं होंगी, स्वर्णिम संगम युग के जोड़े बनेंगे ना। वो सती वो 9,16,108 आबादी होने के बाद बनेंगे या उससे पहले बनेंगे? 16,000 आबादी होगी और 9,00,000 की आबादी होगी, उस 9,16,000 का कंप्लीट सतयुग होने के बाद की बात है या वो जो कुमार और कुमारियां दिखाए गए हैं उससे पहले की बात है? स्वर्ण संगम की बात है, इसलिए वो 84वीं सीढ़ी होगी। और
इन्हीं के आदि में जो विनाश वगैरह हुई तो ब्रह्मा बाबा जिसके लिए निमित्त बने, तो उसके लिए नतीजा ये निकला कि उनका पद का ही विनाश हो गया। उनके पद का बना जो नरसिंह नारायण और नारी से लक्ष्मी जो बनने का जो हमारा लक्ष्मी है ना उससे वंचित हो गए थे हम, तो इतना बड़ा सजा की आदि में।
हाँ
जब विनाश ज्यादा प्रज्वलित हुई ना।
हाँ तो उन्होंने कोई गलती की हो, उन्होंने कोई गलती की होगी यज्ञ के आदि में, ब्रह्मा बाबा से कोई गलती हो गई होगी
जिससे वो पद से ही वंचित हो गए।
गलती करेंगे तो पद से वंचित नहीं होंगे?
नरसिंह नारायण
बनते, नरसिंह नारायण कैसे बनेंगे जब गलतियां करेंगे? तो जो आत्मा ज्यादा गलतियां करेंगे हो सकता है उनके जन्म ही कम हो जाए। ज्ञान तो प्रजापिता को भी नहीं था तो छोड़ के चला गया। ज्ञान तो एडवांस नॉलेज शुरू ही होती है बाद में।
बड़ी गलती नहीं कहा जाता,
ज्ञान नहीं है। और सामान्य गलतियां जो होती हैं, माँ बाप होते हैं तो माँ को किसके डायरेक्शन पे चलना चाहिए? जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जो पढ़ाई पढ़ाता है वो गुरु के समान है, तो ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई किससे मिली? प्रजापिता से पढ़ाई मिली ना। इतना दुनिया में चक्कर काटते रहे, कहीं से भी उनकी बात का जवाब नहीं मिला, और जिस व्यक्ति से बात का जवाब मिल गया उसकी बात न मानना और बच्चों का सपोर्ट करना, तो ये भारी भूल नहीं हो गई?
बाबा शास्त्र में लिखा है ना राम ने वनवास किया 14 साल, तो वो 90-51 से लेकर के 2004 तक बता दी। लेकिन
क्या 2004 तक
1991 से लेकर के 2004 तक बीच का जो 14 साल का समय है ना वो राम
उससे पहले क्या अयोध्या में थे?
नहीं वही तो पूछ रहे किस हिसाब से बताएंगे?
कोई हिसाब नहीं, तो किसी ने बनाया हुआ है तुम्ही लोगों का आपस में। ईमेल का कोई पॉइंट नहीं है हैदराबाद
का,
बीके वाले प्रोग्राम बना रहे हैदराबाद में।
सीनियर गेस्ट को बुलाया है, सीनियर गेस्ट को भी बुलाया
है। हाँ सिनेमा के एक्टर्स को बुला रहे हैं आकर्षित करने के लिए, पब्लिक को आकर्षित करने के लिए और सिने एक्टर्स को बुलाया जाता है।
सोनिया गांधी आ रही है,
सोनिया गांधी भी आ रही है। हाँ तो
है हम क्या करना है?
हम क्या करना है? हमको तो कुछ करना ही नहीं, हमको बाबा को याद करना और क्या करना है? हाँ पर्चे बांटने के लिए मना थोड़े ही है, लेकिन पर्चे बांटने से ज्यादा कोई विशेष रिजल्ट तो निकल नहीं रहा है खास है। पिछली बार भी पर्चे बांटे कुछ निकले? संदेश मिला तो संदेश तो प्रजा बन गई, वारसदार तो उनके प्रोग्राम से भी नहीं निकल रहे, और वारसदार तो पर्चे वर्चे बांटते हो उस प्रोग्राम से भी नहीं निकल रहे।
तो बाबा बताए कि जगत साल की शूटिंग कैसे होगा राम का?
अभी शूटिंग का टाइम पड़ा हुआ है,
आगे भविष्य में
जो फाइनल होता है वो फिर माना जाता है। जैसे अयोध्या नगरी है, जैसे मथुरा नगरी है, वहां के लोग कहेंगे कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जहां शूटिंग होती है वो शूटिंग के हिसाब से स्थान का भी महत्व बन जाता है, वहां यादगार बनती है, माउंट आबू की आप यादगार बता रहे हैं तो हमारी मथुरा नगरी की यादगार कहां चली गई, हमारी अयोध्या की यादगार कहां चली, बनारस की यादगार कहां चली गई? कहते तो आप ये है कि जहां ज्ञान का बना बनाया रस निकला वो बनारस, तो बेसिक के हिसाब से माउंट आबू बनारस हो गया, एडवांस के हिसाब से कंपिल बनारस हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो अभी कुछ भी हुआ नहीं। तो संपन्न स्टेज में जो कार्य आखिरी शूटिंग होती है वो फाइनल मानी जाएगी।
झाड़ का चित्र है ना, हाँ जी, के सामने भारत में राम की मूर्ति खड़ा हुआ दिखाया गया,
उसका मतलब बाबरी मस्जिद। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनी हुई है, किस जगह पे बनी हुई है? जहाँ राम का मंदिर है वहाँ बाबरी मस्जिद भी बनी हुई है। बाबरी का मतलब पगलिया, राम का कनेक्शन त्रेता युग का कनेक्शन इस्लाम वंश से विशेष है, और ज्ञान चंद्रमा कृष्ण का कनेक्शन चंद्रवंशियों से विशेष है।
उसका मतलब क्या
होता है? वो वज्रासन क्यों लगाते हैं?
या तो घुटने के ऊपर खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते समय
आसन भी क्यों नहीं बैठते? माने वज्रासन वो पद्मासन लगा के क्यों नहीं बैठते?
पद्मासन या सामान्य आसन में भी हिंदू लोग जहाँ भी बैठते हैं ना, तो करते समय बैठते हैं ना।
हनुमान की बैठक देखी कभी है? हनुमान पूछड़ी वाला देखा है?
जी ना, वो कौन सी
उसकी बैठक देखी, कैसी होती बैठक?
वो
कौन सी बैठक होती है? वज्रासन की होती है ना, तो जो वज्रासन होता है वो पूछड़ी वालों की यादगार होता है। हनुमान वज्रासन में बैठे हुए दिखाई जाते
हैं, पांव तो खड़ा रहता
है, नहीं खड़े होने की बात अलग, वज्रासन की बात बता रहे। वज्रासन जो है वो हनुमान को दिखाया जाता है, और हनुमान की पूजा होती है द्वापर युग से, वो कलयुग से।
तो उनसे क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म का क्या कनेक्शन है?
मुस्लिम धर्म का कनेक्शन है ना, मुस्लिम धर्म की शुरुआत की होती है तब जबकि कलयुग शुरू होना होता है। इस्लाम धर्म होता आता है द्वापर में, और मुस्लिम धर्म आता है कलयुग शुरू होने से थोड़ा समय पहले है? ज्वाइंट पेन ज्यादा कहाँ होता है? वो कौन सा अंग होता है जहाँ ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है? घुटनों में ज्यादा होता है? इस्लाम धर्म मुसलमान की बात कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए। हाँ जी,
घुटना दर्द होता है
जो शरीर से ज्यादा ज्वाइंट होने की प्रैक्टिस करते हैं उनको फिर ज्वाइंट पेन होता है।
और बाबा जो कलकत्ता में तीर्थ मेला जो होने वाला था ना वो कब होगा? कलकत्ता में मेला होने वाला था ना,
वो तो कलेक्लेश कट्टा होगा तभी होगा। कलेक्लेश कट्टा अंत में होता है कि शुरुआत में होता है?
वही अंत का ही बात
बता दिए ना, अंत में होगा है? अंत माने जब गंगा निकले और ब्रह्मपुत्र में सागर में जाके मिले तो अंत हो गया।
और लक्ष्मी नारायण के चित्र में पूजा निराकार और दीन मूर्तियों को दिखाया गया ना, तो सिर्फ तोले मात्र के लिए ही दिखाया कि वो निराकार जो है वो रचयिता नहीं हो सकता?
रचयिता तो साकार होता है,
इसलिए तोले मात्र के लिए ही वो चित्र लक्ष्मी नारायण के चित्र में रखा गया
है। तो इसलिए रखा गया है कि साकार बनने से पहले निराकारी स्टेज होनी चाहिए, निराकारी और आकारी स्टेज होनी चाहिए। त्रिमूर्ति की स्टेज है निराकारी और आकारी स्टेज, तुम बच्चे भी साकारी आकारी निराकारी तीन स्टेजेस की प्रैक्टिस करो। बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा, तो लास्ट में क्या बनेगा? साकार बन जाएगा। यही बात तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में त्रिमूर्ति में दिखाई गई।
तीन मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा दैवी राज्य की स्थापना है और दूसरा शंकर द्वारा दैवी राज्य का विनाश, तो दैवी राज्य का कौन से दैवी राज्य का विनाश?
शंकर द्वारा दैवी राज्य का विनाश गलती से लिख दिया होगा,
गलती
है, आसुरी राज्य का विनाश
होगा,
गलती
है, प्रिंट करने वाले ने गलत लिख दिया है। या तो प्रूफ रीडिंग करने वालों ने प्रूफ रीडिंग नहीं की है, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है।
ओरिजिनल में आसुरी है,
ओरिजिनल में आसुरी।
हाँ जी।
और जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तभी कास्ट इफेक्ट में बिंदु को याद किया जाता था या साकार में निराकार को याद किया जाता
था? साकार में भी निराकार को याद करते थे, कास्केट सामने रख करके भी याद करते थे। क्योंकि याद करने के लिए बिंदु का स्टूल में सैंपल बनाया गया, कास्केट, और कास्केट में वो छोटा सा बिंदु छोड़ा गया ताकि वो सफेद दिखाई पड़े, याद करने के लिए।
एक छोटी बहन पूछ रही थी कि शंकर पार्वती को पवित्र तो है ना, शंकर पार्वती जो है वो पवित्र तो है, फिर उनको कमल फूल में बैठा हुआ
क्यों नहीं दिखा? शंकर पार्वती को शंकर को कमल फूल पे दिखाया नहीं जाता है? शंकर को तो कमल फूल पे दिखाया जाता है बैठा हुआ। पार्वती को दिखाने क्या जरूरत? वो गुलाब का फूल है या कमल का फूल है?
वही
बहन
पूछ रहे थे कि साकार बाप को पोता में जब लिखकर देते हैं ना, कौन सी सोच पड़ती है? क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि राम बाप तो हमेशा याद में बैठे हुए रहते हैं, तो उस समय पोते में कौन पड़ता
है? पढ़ने का काम किसका होता है, बाप का या दादा का?
दादा।
दादा पढ़ता है।
तो हम किसको समझ कर देंगे?
है शिव बाबा को देव, हम न ब्रह्मा को देव है, न विष्णु को देव है, न शंकर को देव है, न राम को देवे, न कृष्ण को देंगे, हम देते किसको? हमारा लेन देन किससे है? हमारा लेन देन शिव बाबा से है। ये यही तो लफड़ा हो जाता है, इसलिए तो बाबा मुरलिम बोलते हैं, कोई राम के मुरीद, कोई कृष्ण के मुरीद, कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद, शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन सारा राम कृष्ण की आत्मा के ऊपर हो जाता है। राम कृष्ण की आत्मा है तो भरतनाट्य पहनी आखिरी जन्म, उनसे लेन देन क्यों करें?
एक वैदा कैसेट में कह रहे थे ना, एक माता जी से डिस्कशन हो रहा था, तो वो माता जी कह रही थी कि पूछ रही थी कि जैसे कि धर्म पिताओं ने आकर के इस रूपी घर का मरम्मत कर दी, इस्लाम धर्म के मुखिया आकर के क्या किए?
वो भी मरम्मत करता है।
वो कौन सा मरम्मत हुआ?
अरे आधा विनाश हो गया तो मरम्मत नहीं करना पड़ेगी। आधी दुनिया की जो धारणाएं थी देवताओं की, उनकी आधी धारणा का विनाश हो गया है,
तो आकर के क्या?
तो आकर के धारणाओं की स्थापना करते हैं, मरम्मत करते हैं।
कैसी धारणा?
जो मनुष्यों की धारणाएं होनी चाहिए वो देवता ही धारणा की स्थापना नहीं करेगा, क्योंकि प्योरिटी की बात को जानते ही नहीं। अब विचार क्या चीज होती है उसको जानते ही नहीं, वो मानवीय धारणा स्थापन करते हैं। बन चुकी है
अष्टलक्षण
की माला, बन चुकी है। न अभी अष्टदेव की बनी है न रतन की बनी है।
तो बाबा एक नहीं समझे कि प्राणवायु स्थित करना है, जैसे कि गीता में भी बोला है, तो सब श्वास प्रश्वास सब बंद हो जाएगा टोटल अंत अंतिम से, तो ये चीज मतलब टोटल स्टॉप हो जाएगा। तो
गहरी याद होती है, तो गहरी याद में श्वास प्रश्वास बहुत धीमी हो जाती होती है। जितना जितना आदमी भोगी बनता है तो श्वास प्रश्वास उखड़ जाती है, जितना जितना योगी बनता है उतना श्वास प्रश्वास खत्म होती जाती
है। दादा लेखराज का जन्म हो चुका है,
हो चुका है तो कहाँ हो चुका है।
वो बोलते हैं अगर मना दादा लेखराज इसमें पार्ट करेगा तो सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए ना वो आत्मा।
हो चुका है तो बताओ ना कहाँ हो चुका है,
शरीर में है ऐसा कौन मानेगा।
ब्रह्म कुमारी भी तो कहती है ये मम्मा बाबा का जन्म नेपाल में हो चुका है।
धारवाड़ से संजीव,
संजीव भाई है।
महीनों पहले मैंने एक पत्र लिखा था कंपिल को, जिसमें मैंने लिखा था कि मुझे ये संकल्प आता है कि दादा लेखराज ने अब ये शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म लिया है, अर्थात स्थूल जन्म लिया है। मुझे ये विचार बार बार आ रहा है और दृढ़ हो रहा है। इसका कारण है मैंने मुरली खंड एक पढ़ी, उसमें अंडरलाइन किए हुए मुख्य पॉइंट्स पढ़े और जो पॉइंट्स मेरे पास लिखे थे उन्हें भी पढ़ा। इन पॉइंट्स के द्वारा मैं अपने विचार को स्पष्ट करना चाहता हूँ। दादा लेखराज के पुनर्जन्म की आवश्यकता दो प्रमुख विषयों के कारण है। पहला, शिव बाबा ने मुरली में दादा लेखराज के तन को ही मुकर्र रखा है। कहाँ और फिर टेम्पररी रथ किसको कहा है? अगर दादा लेखराज के तन को मुकर्रर रखा है फिर टेम्पररी कौन है? जिस मनुष्य आत्मा के रथ को शिव बाबा अपना आधार बनाते हैं वही मनुष्य आत्मा संगत में प्रजापिता के रूप में माना जाएगा। ऐसा पूरा ज्ञान ही नहीं, प्रजापिता तो सृष्टि को होना चाहिए। प्रजापिता तो जब तक प्रजा है तब तक प्रजापिता भी है, प्रजापिता तो सूक्ष्म बतनवासी बनता ही नहीं, तो इसको पता ही नहीं है इस बात का।
ऐसी हिम्मत कैसे करते हो हर एक गीता पाठशाला में लेकर?
और मुरली में दादा लेखराज को ही प्रजापिता कहा गया है, वो तो टाइटल मिला है इसलिए बोल दिया है। प्रजापिता को साकार सृष्टि में अपने शरीर के साथ होना पड़ेगा, किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर कोई प्रजापिता नहीं कहलाएगा। इस कारण दादा लेखराज को अपना स्थूल शरीर होना आवश्यक है। इस कारण दादा लेखराज के शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म अनिवार्य है। दादा लेखराज का पुनर्जन्म वाला स्वरूप ही संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है। वही स्वरूप श्याम सुंदर है। इसके तो साबित करने के लिए मुरलियों को पॉइंट्स नीचे दे रहा हूं। हेडिंग, दादा लेखराज का तन ही मुकर्रर है। अभी ऊंच से ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। इसे पता ही नहीं ब्रह्मा कितने हैं, है? यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। मुरली खंड एक प्रश्न 155 है। हाँ, ये मुरली खंड एक माना जो बम्बई से छप रहा है वो। अच्छा, बाप ही पावर बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है, ये बदली हो नहीं सकता, ये भी नूद है, पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। पावन बना कहां, पावन भी तो बनना चाहिए ना। फिर उस शरीर के रहते रहते मुकर्रर है, तो शरीर के रहते रहते कोई आत्मा पावन भी तो बनना चाहिए। तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। माना उनका ये विचार है कि आगे चल करके ब्रह्मा बाबा की सोल प्रत्यक्ष हो जाए, शरीर से जन्म लेकर के होगी प्रत्यक्ष। लेकिन बाबा तो बोलते, वो कहते थे मैं कृष्ण बनूंगा, नई दुनिया में जाकर मैं कृष्ण बनूंगा। है वेद का बाप वेद पढ़ाते हैं, उनको अब कोई भी लोभ नहीं है, जैसे सन्यासियों को होता है, महल बनाए यह करे। शिव बाबा को तो यह एक ही फ्लैट मिल गया है, वेद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, बैठ पढ़ाते हैं तो साकारतन की बात हुई ना। तो बेहद तो 500-700 करोड़ को कहा जाता है, 500-700 करोड़ ने बेहद ने उसे बाप कहां बना। ब्रह्मा के रूप को 500-700 करोड़ ने बाप कहां माना, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही तो बाप मानती है। तो बेहद का बाप कैसे हुआ, बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको अब कोई लोभ नहीं है, उनको माना किनको, बेहद के बाप को। तो वो तो बेहद का बाप भी साबित होता, बाबा सब बात का अनुभवी है। तब तो बाप ने इनका इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का, सबका अनुभवी है। रामानुसार ये एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। 67 में किसका बदला अड़सठ है,
वो बोल रहे हैं
अड़सठ से जन्म हो चुका है, अड़सठ से जन्म है कहाँ मेरे, 38 साल हो गए, फिर होना चाहिए उसको, ढूंढ निकालो। त्रिमूर्ति चित्र की लिखत में दिव्य जन्म और कर्तव्य में स्थापना, मैं कलयुग के अंत और नए सतयुग के आदि के संगम पर परमधाम से अवतरित होकर श्री कृष्ण अर्थात नारायण के 84वें जन्म के साधारण वृद्ध मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। मेरे ऐसे अलौकिक जन्म के पश्चात इस मनुष्य को आदिदेव ब्रह्मा या आदम कहा जाता है। लेकिन आदम या आदिदेव ब्रह्मा को तो कहा ही नहीं जाता शास्त्रों में। शास्त्रों में विष्णु को भी आदिदेव नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी नहीं कहा जाता, ऐसे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए ऐसे लिख रहा है। और आदम तो दूसरे धर्म के लोग मानते हैं, आदम नाम दूसरे धर्म के लोग ब्रह्मा को आदम कहां मान रहे हैं। जो बड़े बड़े विचारक हैं वो फिर भी इस बात को मानते हैं कि हाँ शंकर का स्वरूप जो हिंदुओं में शंकर माना जाता है वो ही आदम था। और नारायण के 84वें जन्म के साधारण वृद्ध मनुष्य तन में नारायण तो नर से नारायण बनता है, तो ब्रह्मा की सोल तो नर से प्रिंस बनती है। नारायणगण मंदिर, बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वो कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है। दादा लेखराज की सोल ही अपने शरीर द्वारा प्रजापिता है। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर वह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी थे। अरे ये बाप कौन है हाईएस्ट अथॉरिटी है? सुप्रीम सोल हाईएस्ट और लोएस्ट अथॉरिटी। साकार दुनिया की बात है कि निराकार दुनिया की बात है? तो वो हाईएस्ट बाप साकारी है, हिंदू है या साकार है? साकार है। अच्छा बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर वह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी। ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी, तो दोनों एक हो गए फिर। हाईएस्ट तो एक होगा ना कि दो चार होंगे? ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। आत्माएं हैं शिव बाबा की बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। अहमदाबाद गुजरात भारत।
मुरली का भी पॉइंट नहीं है,
मुरली
का भी पॉइंट नहीं है।
अब ये इस एड्रेस के अनुसार तो स्वामीनारायण मंदिर में जानी चाहिए किताब, उनसे पूछना चाहिए। ये तो आपका एड्रेस लिखा हुआ है स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद, क्या आप यहाँ से छपी है किताब? वो कहेंगे नहीं। तो यहीं से झूठा हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब असली एड्रेस आया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सतीश भाई मेहता, 102 सीता कुटीर, शिवसेना ऑफिस के समीप, वसई रोड पूर्व, 401-210 फोन नंबर। ये प्रथम मंत्र 26-8-2005, प्रतियां 16108, एक एक प्रति बांटते जाते हैं, कोई सुने या न सुने दे देंगे, है नहीं? फिर कहेंगे जिन जिन के पास ये प्रति जा रही है वो 16108 की लिस्ट में आ गई। ईश्वरीय मुरलियों की प्राप्ति का स्थान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू। दूसरा है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय कंपनी। त्रिमूर्ति शिव कुमार रूहानी ईश्वरी विश्वविद्यालय वसई। ये किताब सिर्फ छपी है त्रिमूर्ति ब्रह्मावत्सों के लिए, मूल्य बिना मूल्य। मुद्रक चिंतामणि प्रिंटिंग प्रेस, पान दरीबा औरंगाबाद, फोन नंबर ये। अरे कहीं इधर 16108 में ना आ पाए तो उसमें तो आ ही जाएंगे।
तो बोलते फिर अभी भी और ऊंचा ऊंचा चढ़ो ना,
अभी गाय का घी मिल रहा है।
अभी 80 से मथुरा में एक लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुए हैं, और वो माउंट आबू भी जाते रहते हैं, संगठन बना के लोगों को ले जाते हैं, कपड़े पहन के और मुकुट लगा के सब्जी में बैठते हैं, कोर्ट मैरिज की हुई है, और ध्यान मृदंग बजीरा बजते रहते हैं, नाच खेल होता रहता है, संगम की स्वर्ग प्रत्यक्ष हो गया।
कौन जाता है
वहाँ? माता जाती है ढेर सारी।
अहमदाबाद में हो गया, ये कितने हो गए ना बाबा?
है
बहुत हो गए,
होना चाहिए ना बहुत, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है, पूरा पूरा उठाते ही नहीं है, और कचरा एक तरफ इकट्ठा होना चाहिए ना, है
ना,
नहीं तो सारे ही नहीं 108 में आ जाएंगे।
बाबा 16 कला क्या होती है?
चंद्रमा की 16 कला क्या होती है?
नहीं अलग अलग,
चंद्रमा भी तो 16 कलाओं में आता है और जाता है, मैं एक महीने के अंदर चंद्रमा 16 कलाओं में आता है, फिर 16 कलाएं उसकी कब हो जाती है, कौन सी
तेज की
है,
प्रकाश
जी रोशनी है, ऐसे ये भी आत्मा की रोशनी है।
बाबा जब वैष्णवी यहाँ जाएगी तो लक्ष्मी बनेगी,
हाँ,
और जगदम्बा राजमाता बनेगी,
हाँ,
सत्युग में भी वैसे ही बनेगी,
हाँ,
सत्युग में कैसा होगा,
सत्युग क्या होगा,
अभी जो संगम युगी जो लक्ष्मी नारायण है,
हाँ,
सत्यु
में राधा कृष्ण जन्म लेंगे और 16-18-20 साल के होंगे तो उनका फिर वो क्या नाम उनका कॉर्पोरेशन होगा, वो गद्दी में बैठेंगे तो जो लक्ष्मी है वो राजमाता बन जाएगी, राधा जो है राजलक्ष्मी बन जाएगी, तो क्या बड़ी बात हो गई,
राजमाता
की राजमाता नीचे उतर जाएगी, हमेशा हर जन्म में राजमाता बनती रहेगी, पहले जन्म के लक्ष्मी नारायण है वो अगले जन्म नीचे उतरते जा रहे हैं,
शरीर छोड़ते जाएंगे,
और क्या शरीर छोड़ेंगे तो नीचे उतरेगा, सदा एक साथ समय किसी का सुना और नहीं देखा है, हर जन्म में नारायण बनते रहेंगे क्या,
राम सीता जी
हाँ
राम सीता की
बनती है,
कौन सा
राधा कृष्ण ज्ञान में 14 कला नहीं बनती है, बनती है बस, जो भी सच घुमाने वाले हैं उनको त्रेता में जाकर के 14 कला बनते हैं, कली में आके कला नहीं बनते हैं,
बाबा वो बीके एक माता थी,
हाँ,
वो बोल रही है कि फिर डायरेक्ट अवे क्वानी में क्यों नहीं बता रहे, बोले ब्रह्मा बाबा
डायरेक्ट बाबा हाँ। कहते ये ज्ञान देवताओं को दिया जाता है, देवता है इशारे से समझते हैं, तुझे इशारे से समझने वाले देवता है वो निकल गए एडवांस पार्टी
तो,
और तो जो है इशारे समझने वाले नहीं है
वो तो बोला
हाँ वो कैसे समझेंगे,
सभी जगह मूर्ति चल के बाबा की सीढ़ी लगाते
हैं,
ऐसी कोई माता आकर अव्यक्तवाणी के पॉइंट पढ़ा सकते हैं क्या,
अव्यक्तवाणी के पॉइंट पढ़ा सकते हैं,
माना अव्यक्तवाणी पढ़ सकते हैं क्या,
किस लिए पढ़ना
है, नहीं पढ़ना है ना, सिर्फ बाबा की सीढ़ी लगनी चाहिए ना, और कोई भी माता यहाँ कर अव्यक्तवाणी के पॉइंट पढ़ा सकते है,
बता दिया ना कि जो मुरली सुनाई जाती है मुरली पढ़ी जाती है वो है थर्ड क्लास, जो टैप रिकॉर्ड में सुनी जाती है पॉइंट कैसे गलत है वो भी तो बताओ,
माना अव्यक्तवाणी कैसे पढ़ सकते हैं,
तो पढ़ेंगे तो थर्ड क्लास हुई या सेकंड क्लास हुई या फर्स्ट क्लास हुई,
माना संगठन में नहीं पढ़ते,
जो खंड दिए खंड है जो दो खंड है तो वो पढ़ने चाहिए, थर्ड क्लास मुरली का खंड है,
जो भी पढ़ना है पढ़ा या दूसरे से पढ़ा हुआ सुना वो है थर्ड क्लास, और जो बाबा की आवाज में सुना टेप रिकॉर्ड से वो है सेकंड क्लास, और जो डायरेक्ट सुना वो है फर्स्ट क्लास,
अरे बाबा लेकिन मैं आप उनके जो खंड निकाले पढ़ने में क्या हारते
हैं, जो भी खंड वंड निकाले हैं वो किसके लिए निकाले हैं, ब्रह्म कुमार कुमारों के लिए निकाले,
वो तो पढ़ना ही उनको समझाने
उनको समझाओ
सीढ़ी में तो
उनको दिखाओ
बताई जाती है, सीढ़ी में तो सारी बातें बताई जाती है ना,
हाँ
फिर अलग कैसे बताएंगे,
हाँ वही बात बताई
है, बताने की कोई जरूरत नहीं है,
जिसको फर्स्ट क्लास मिलता हो वो सेकंड क्लास थर्ड क्लास क्यों लेगा, जिसको सेकंड क्लास मिलता हो वो थर्ड क्लास क्यों लेगा,
बाबा अभी बोला ना मुरली में
हाँ।
दादियों को
हाँ।
इशारे मिलते हैं
हाँ।
हाँ। मुरली में सही इशारा है बाबा कि दादी जी से बात कर रहे हैं तो आपको भी अव्यक्त होके पार्क में जाना है ऐसा
हाँ।
इशारा दिया है हाँ। तो वो खाली प्रकाशमणि दादी के लिए या फिर सभी दादी
हाँ?
खाली कुमारका दादी के लिए या सभी दादियों के लिए
है तो नंबर वन सभी दादी मुझे
आपको भी अवित होके पार्ट बजाना है ऐसा इशारा दिया
माने अभी अगर तो बनी नहीं
है शरीर छोड़ेंगे ना शरीर छोड़ के या फिर शरीर में रहेंगे
ये नहीं बताया शरीर छोड़ करके अभ्यक्त बनना है बनाना है या शरीर रहते अभ्यक्त बना दोनों तरीके से अभ्यक्त बन सकते हैं शरीर में रहते भी आकारी बन सकते हैं और शरीर छोड़ करके भी आकारी बने जो शरीर छोड़ करके आकारी बने वो फिर सतीगुजा के जन्म लेंगे बाद वाले जन्म
उनका एडवांस नॉलेज कैसे होगा प्रवेश करके
प्रवेश करेंगे
बाबा माउंट आबू तपस्या होनी है अंत में सभी माउंट आबू में जाना पड़ेगा
सभी
को
सभी
यानी 9 लाख जो अपने वही जाएंगे उनका
9 लाख 4.5 लाख तो शरीर ही नहीं होगा सूक्ष्म शरीरदारी
4.5 लाख
हाँ।
जो है वो उधर जाएंगे
हाँ जी
4.5 लाख जन्म देंगे
हाँ जी
लेकिन जब उनमें अभी जो नीचे वाले दादा दादियाँ उधर है उनकी पोजीशन क्या होगी तो वो भाग जाएंगे वहाँ से या
जो स्थापना होगी वो सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की होगी या दूसरे धर्म वालों की होगी
दोनों के मिला के माला पिरोई जाती है
हाँ?
ये तो मालूम है लेकिन उसमें तो सबके सब तो नहीं सबके सब तो नहीं आएंगे ना माला में तो फिर दूसरों का क्या
दूसरों वाले कौन
मधुबन में रहते हो
हाँ मधुबन में रहते हो तो सर छोड़ने के लक्ष्य लिए हुए उन्हें एडवांस का लक्ष्य लिया ही नहीं कल्चर का या बनाने का तो अंतमती गति क्या होगी
तो उनका पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा
है
उनका पुरुषार्थ बेकार
इस जन्म के लिए बेकार हो जाएगा इस जन्म में प्राप्ति नहीं होगी अगले जन्म में किसी जन्म में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे 9,16,108 जो है वो पूरे 84 जन्म लेते हैं
तो
उनका एक जन्म उधर त्रेता में बढ़ जाएगा ना
जब भूकंप हुआ था ना अभी पाकिस्तान में तब सूर्य के ऊपर 3 दाग दिखाई दिए थे
सूर्य के ऊपर 3 दाग दिखाई दिए
और अभी स्टार न्यूज पे दिखाई दिया
है
स्टार न्यूज पे न्यूज दिया था
सूर्य के ऊपर दाग नहीं होते हैं सूर्य के सामने कोई ग्रह उपग्रह आ गया होगा
नहीं उसके ऊपर दाग लग गया ऐसे
दाग नहीं
साइंटिस्ट ने दिखाया था
वो साइंटिस्ट दिखाया तो वो इसीलिए दिखाया है कि उस सूर्य और पृथ्वी में रहने वालों के बीच में कोई ग्रह या उपग्रह आ गया तो ग्रह उपग्रह की परछाया जो है वो इधर पड़ने लगी और वो हिस्सा उधर छाया में दिखाई पड़ने लगा जैसे सूर्यग्रहण पड़ता है सूर्यग्रहण पड़ता है ना तो पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा की छाया सूर्य के ऊपर पड़ जाती है
तो अभी सृष्टि का विनाश मतलब पृथ्वी का विनाश या पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा
विनाश नहीं होता पूरे ब्रह्मांड का 5 तत्वों का विनाश होता है न पूरे ब्रह्मांड का विनाश होता है और न सृष्टि का विनाश होता है न आत्मा का विनाश न परमात्मा का विनाश ये सिर्फ रूप बदलते हैं सूर्य का विनाश थोड़ी होगा